दिन भर तारीख 19 जनवरी दिन गुरुवार, मैं हूं विनीत खरे। तमिलनाडु और राज्य के बाहर जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी। जानेंगे जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध से तमिल समुदाय नाराज क्यों है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में 12 बच्चों की मौत। उत्तर प्रदेश में ही बिना सीएम उम्मीदवार उतरने की भाजपा रणनीति कितनी सही है।
कोई ऐसा फेस नहीं है उनके पास कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में हो जाए, प्रोजेक्ट करे तो दिक्कत है।
साथ में आपके पत्र और भारत इंग्लैंड एक दिवसीय मैच का ताजा हाल, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर होने वाले जल्लीकट्टू खेल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। संगीतकार एआर रहमान भी जल्लीकट्टू के समर्थन में आए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए बताया है कि वो इस खेल के समर्थन में एक दिन का उपवास रखेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के लिए हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने का इंतजार करेगी। जल्लीकट्टू को फिर से शुरू करने के लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने यह बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम से कहा। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जल्लीकट्टू फिर से नहीं शुरू होगा उनका प्रदर्शन चलता रहेगा।
मध्य इटली के अब्रुजो इलाके में एक माउंटेन रिसोर्ट के हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्रांड सासो माउंटेन पर बने होटल रिगो पियानो में कम से कम 30 लोग मौजूद थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। बुधवार को इस इलाके में कई शक्तिशाली भूकंप आए, जिसके बाद हिमस्खलन हुआ। बचावकर्मी बहुत मुश्किलों के बाद आज हादसे वाली जगह पर पहुंच सके हैं। ईरान की मीडिया का कहना है कि तेहरान में एक बहुमंजिली इमारत के गिरने से कई दमकल कर्मचारियों के मौत की आशंका है। इस इमारत में आग लगने के बाद दमकल कर्मचारी उसे बुझाने में लगे थे, इसी दौरान ये इमारत गिर गई। 17 मंजिली प्लास्को इमारत को बचाने के लिए 200 से ज़्यादा दमकल कर्मचारी लगे हुए हैं। इस हादसे में 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के वहां फंसे होने की आशंका है। इमारत में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया। मैं पिछले 10-12 साल से प्लास्को में मौजूद दुकानों के लिए अकाउंटेंट का काम करता हूं। सुबह करीब 8:15 पर वहां 11वीं मंजिल पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज और उसके बाद लगी आग इतनी बड़ी थी कि हमें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ईश्वर दमकल कर्मचारियों और उनके परिवारों को बचाए। ये इमारत राजधानी तेहरान के मध्य इलाके में है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफ्रीकी देश गाम्बिया के निर्वाचित राष्ट्रपति अडामा बैरो का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। हालांकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पड़ोसी देश सेनेगल की राजधानी डकार में गाम्बिया के दूतावास में होगा। चुनाव में हारने वाले याह्या जमे अभी भी राजधानी में डटे हुए हैं और पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। कई पड़ोसी अफ्रीकी देशों ने सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दी है, लेकिन याह्या जमे पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। कई देशों की सेना गाम्बिया की सीमा पर जमा हो गई है। इस बीच उपराष्ट्रपति समेत सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तुर्की की संसद संविधान में बदलाव के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। इन बदलावों के बाद राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दवान को ज़्यादा शक्ति मिल जाएगी। बीती रात सांसदों ने चुनाव में वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा घटाकर 18 साल करने के साथ ही राष्ट्रपति और संसद के चुनाव हर 5 साल पर एक साथ कराने के लिए वोट दिया। देश की 2 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने शिकायत की है कि इन बदलावों से देश में निरंकुशता को बढ़ावा मिलेगा, जबकि सरकार का कहना है कि इससे सुधार होगा और नाजुक गठबंधन सरकारों का दौर खत्म होगा। इन बदलावों पर अंतिम मतदान शुक्रवार को होने की उम्मीद है, जिसके बाद इन्हें देश में जनमत संग्रह के लिए भेजा जाएगा। दुनिया में टेनिस के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में बाहर हो गए हैं। उन्हें उज्बेकिस्तान के डेनिस स्तोमी ने हराया। जोकोविच इस टूर्नामेंट में पिछले साल विजेता रहे थे। 2006 के बाद यह पहला मौका है जब जोकोविच किसी ग्रैंडस्लैम मुकाबले के दूसरे दौर में ही बाहर हो गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। कार्यक्रम की शुरुआत जल्लीकट्टू विवाद से। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में तमिलनाडु के गांवों में खेले जाने वाले जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। पशु अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले बैलों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। 2 सालों बाद इस प्रतिबंध को हटाने को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मामला अदालत में है और इस बारे में अध्यादेश लाया नहीं जा सकता जैसा कि मांग की जा रही है। उधर गुस्साए लोगों ने कुछ जगहों पर ट्रेनों को रोकना शुरू कर दिया है। एआर रहमान, रजनीकांत, कमल हासन जैसे कलाकार जल्लीकट्टू का समर्थन कर रहे हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
जो उम्मीद थी कि केंद्र सरकार जल्लीकट्टू को फिर से शुरू करेगी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम को कह दिया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक कुछ नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस निर्णय को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद पन्नीर सेल्वम ने पत्रकारों को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी कि केंद्र सरकार एक आपातकालीन अध्यादेश लाए। पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में पन्नीर सेल्वम ने कहा, जब तक हम सहनशील रहें उससे हमारा अच्छा ही होगा। ये थे पन्नीर सेल्वम के शब्द। पन्नीर सेल्वम के शब्द और प्रधानमंत्री के ट्विटर पर संदेश से प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर उसका उत्तर सिर्फ एक जोरदार ना था। जवाब बहुत तरीकों से आया, सुनिए ये आवाजें। जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं होती हमारा प्रदर्शन चलता ही रहेगा। ये था एक युवक का भाषण जिसको तालियों से समर्थन मिला। ये प्रदर्शन सिर्फ चेन्नई में ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के बहुत सारे जिलों में भी चल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जल्लीकट्टू के समर्थन में इकट्ठा होने का कारण क्या होगा? क्या सिर्फ जल्लीकट्टू ही एक वजह है? हमने यह सवाल चेन्नई के लॉयला कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क डॉक्टर ग्लैडस्टोन जेवियर से पूछा।
Absolutely, this is a kind of a spontaneous upsurge of youth power in Tamil.
ये युवा शक्ति का उभार है। ये सिर्फ जल्लीकट्टू के समर्थन में ही नहीं बल्कि अनेक विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों के निर्णयों के खिलाफ असंतोष जता रहे हैं। इसमें कृषि संकट भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे युवकों को ये भी महसूस हो रहा है कि उनकी तमिल पहचान खतरे में है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि ये कोई संगठित नेतृत्व में नहीं है। ये थे डॉक्टर जेवियर के शब्द। तो क्या यह प्रदर्शन चलता ही रहेगा? हमने यह सवाल एक और युवक प्रसन्ना से पूछा। प्रसन्ना एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा,
I think it is a cliche statement by both the state government and the central government and
हमें कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी केंद्र और राज्य सरकार से। प्रदर्शन थोड़े दिनों तक तो चलेंगे ही, लेकिन आपको कई विषयों पर इस तरह के प्रदर्शन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ये थे प्रसन्ना के शब्द। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां किसी भी तरह का प्रदर्शन फौरन दबाया जाता है, और उस तरह के राज्य में जो पिछले 60 घंटों में हो रहा है वही एक तरह का रिकॉर्ड है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सारे आंखें पन्नीर सेल्वम पर होंगी, क्योंकि ये एक तरह से उनका परीक्षा का समय है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और कल तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट यूनियन, व्यापार संगठनों, टैक्सी ऑटो संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली में भी जारी है। आखिर जल्लीकट्टू क्या है और उस पर लगी पाबंदी से तमिल समुदाय इतना नाराज क्यों है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
तमिलनाडु के कई शहरों में पिछले 3 दिनों से जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी को उठाने की मांग जारी है। लेकिन यह जल्लीकट्टू है क्या, ये बता रहे हैं प्रदर्शन में भाग लेने आए सलियन।
ये जल्लीकट्टू है 5000 साल से पुराना से चल रहा है तमिलनाडु में। हमारा एक पोंगल होता है, वो सिर्फ तमिलनाडु में जितना भी लोग हैं वो सिर्फ एनिमल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और पोंगल फार्मर्स एंड फॉर एनिमल्स इन्हीं के लिए होता है। इस टाइम पे हमने एनिमल को ग्रो करने के लिए हम उसके साथ खेलते हैं, वो एक दिन होता है।
ये बैलों और इंसान के बीच टकराव का एक खेल है जो तमिल गौरव और संस्कृति से जुड़ा है। अचानक प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शनकारी बल्ली कुमार कहते हैं,
एक्चुअली हमने पिछले 2 साल से जल्लीकट्टू नहीं हुआ था। हम लोग सोचा था इस साल जल्लीकट्टू कैसे भी होगा करके, लेकिन ये गवर्नमेंट ने दोनों गवर्नमेंट में मिला के हम लोग जल्लीकट्टू नहीं किया था। इसलिए सारा पीपल, स्टूडेंट, गैंगस्टर सब भी मिला के हमने चालू कर दिया, कैसे भी हम लोग का जल्लीकट चाहिए चाहिए।
चेन्नई से आए सुप्रीम कोर्ट के तमिल वकील प्रदीप कुमार कहते हैं कि सरकार को अलग कानून बनाना पड़ेगा।
पार्लियामेंट का पावर है, अलग पावर है, कानून बनने के लिए पावर है।
राज्य सरकार और इसके नए मुख्यमंत्री की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आज सुबह एक स्कूल बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर में 12 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई बच्चे बुरी तरह से घायल हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
रोते बिलखते इन परिजनों के लिए 19 जनवरी की सुबह एक भयानक तारीख में बदल गई, जब एटा जिले के असदपुर गांव के पास हुए हादसे में 12 मासूमों की जान चली गई। सुबह करीब 8 बजे अलीगंज कस्बे से कुछ दूरी पर एक स्कूल की बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सुबह के वक्त काफी घना कोहरा भी था। घटनास्थल पर मौजूद एटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिसर्जन सिंह यादव ने बताया,
स्कूल की बस थी, वो बच्चों को कलेक्ट करके ले आ रहे थे, उधर से ट्रक आ रहा था, आमने सामने बस और ट्रक में भिड़ंत हुई, इसमें घटना स्थल पे ही 10 बच्चों की डेथ हो गई। 22 से लेकर 25 बच्चे सीरियस रूप से घायल थे, जिनको यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है अलीगंज में यहाँ दाखिल कराया गया। इसके बाद जो सीरियस थे उनको मेडिकल कॉलेज
घटना में बस के ड्राइवर की भी मौत हो गई और 16 घायल बच्चों को सैफई के मेडिकल कॉलेज, एटा और आगरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना स्थल पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था,
बस आ रही थी और बस में हादसा हुआ, गाड़ी पलट गई या कैसे बच्चे खत्म हो गए, ये ड्राइवर भी खत्म हो गया और इसका न जाने कैसे हादसा हुआ, और ये हादसा बच्चों के लिए ज्यादा भयानक हादसा हुआ है। लगभग बच्चे 17-18 लोगों बच्चों की मौत हो गई, बाकी बच्चों को पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। 60-65 बच्चे थे इसमें,
केवल 5 का क्या हुआ, वहाँ से बस आ रहे थे बच्चे, आ रहे थे पढ़ने के लिए, बस पढ़ने के साथ 8 बजे तक के थे।
प्रशासन का कहना है कि कुल 12 बच्चों की मौत हुई है, जबकि वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। घटना की वजह घना कोहरा को बताया जा रहा है। हालांकि डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को 20 तारीख तक बंद करने के आदेश दे रखे हैं, बावजूद इसके स्कूल खुला था। एटा के जिलाधिकारी शंभुनाथ ने कहा कि इसके लिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
कुछ बच्चे बचाए भी गए हैं, 15 बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया भी गया था, उनके लगभग 45 बच्चे बस पर सवार थे, सबका फ्री इलाज हम लोग करवा रहे हैं और इनके पीएम की भी व्यवस्था हम लोग यही कर रहे हैं ताकि इनके परिजनों को कठिनाई ना हो। जो स्कूल उन्होंने है, स्कूल ने ये गलती की कि उन्होंने आज स्कूल मैंने बंद करने का आदेश दिया था, 20 तारीख तक ठंड को देखते हुए बच्चों की छुट्टी थी, तो ये गलती उन्होंने की थी और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनकी मान्यता भी समाप्त करने की कार्रवाई।
इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने दुख जताया है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घायल बच्चों के मुफ्त इलाज का आदेश दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि घने कोहरे के बावजूद न सिर्फ स्कूल बस की रफ्तार तेज थी, बल्कि उसमें सुरक्षा मानकों का भी अनुपालन नहीं किया गया था।
ये थे समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही इस बात पर बहस तेज हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी चीफ मिनिस्टर यानी सीएम उम्मीदवार मैदान में उतारने की रणनीति कितनी सही है। दूसरी तरफ कुछ स्थानीय नेताओं के समर्थकों में इस बात को लेकर रोष भी है। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव।
जुलाई 2016 की एक दोपहर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के बस्ती जिले में बूथ प्रभारियों की एक बैठक ले रहे थे। एकाएक कुछ कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर योगी आदित्यनाथ के नारे लगाने शुरू कर दिए। हमारा सीएम कैसा हो, आदित्यनाथ जैसा हो, के नारों से नाराज मंच पर मौजूद अमित शाह ने गुस्से में कहा, भाषण जारी रखूं या बंद कर दूं। बाद में इसी भाषण में अमित शाह ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी और सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम उत्तर प्रदेश में ऊर्जा प्रदान करता है। मजे की बात यह है कि मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे थे, जो मुस्कुराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जहां ये सम्मेलन जारी था उससे 1.5 घंटे की दूरी पर सुल्तानपुर है, जहां के भाजपा सांसद वरुण गांधी हैं। बस्ती की बैठक के महीने भर पहले इलाहाबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान शहर के कई हिस्सों में वरुण गांधी यानी भावी सीएम के के पोस्टर रातों रात देखे गए थे। सुल्तानपुर से ही सटा हुआ अमेठी है, जहां पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी से हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के तूफानी दौरे जारी रहते हैं। एक ऐसे ही दौरे से लौटते समय हवाई जहाज में मैंने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री पद के बारे में क्या ख्याल है। मुस्कुराती हुई स्मृति का जवाब मिला, दफ्तर आओ बात करते हैं, लेकिन सवाल मंत्रालय से जुड़े ही रखना। पिछले साल इन चारों नेताओं का नाम कभी न कभी मुख्यमंत्री पद के लिए उछला है या उछलवाया गया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व तो अभी तक किसी के लिए पसीजता नहीं दिखा। वरिष्ठ पत्रकार राजीव वाजपेयी को लगता है कि दाल किसी की नहीं गलने वाली।
बीजेपी के पास इतनी हिम्मत नहीं है। फिलहाल जो वस्तुस्थिति है, यहाँ के जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, उसमें उनको लगता है कि मोदी का नाम ही सबसे ऊपर है और वही हमें वोट दिलाएगा, इसलिए मोदी को पीछे करके किसी बड़े नाम को आगे नहीं करना चाहते।
हाल ही में एक पत्रकार ने अमित शाह से पूछा था, क्या भाजपा राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के इस पद के लिए प्रोजेक्ट करेगी। अमित शाह का जवाब पुराना सा था, भाजपा के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र आज भी जिंदा है, लेकिन यूपी चुनाव के निकट आते आते भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते लीडरों का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस बीच चार साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बात से इनकार करते नहीं थकते कि यूपी में भाजपा के ऊपर एक बड़े स्थानीय चेहरे का संकट है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी,
जिनके पास नेतृत्व है वो क्या क्राइसिस में नहीं है? जो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, ना बनाए, आप बनाए, उनके पास भी एक चेहरा मायावती, कांग्रेस के मित्र लेकर आए थे शीला दीक्षित जी को, उनको मझधार में छोड़ दिया। कि हमारे पास 1000 से ऊपर कार्यकर्ता है, जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा मुख्यमंत्री का काम करो, मुख्यमंत्री का काम करने लगेगा।
हालांकि लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट को लगता है कि भाजपा अपने हाल के इतिहास को दोहराने की मंशा से ही ऐसा कर रही है।
बीजेपी के लोग यहाँ ये भी तर्क देते हैं कि हरियाणा में हमारा कोई चेहरा नहीं था, झारखंड में हमारा कोई चेहरा नहीं था, महाराष्ट्र में हमारा कोई चेहरा नहीं था, फिर भी हम तीनों जगह हम चुनाव जीते। बीजेपी में इस समय इस बात को लेकर के अंदर झगड़ा नहीं कि चेहरा कौन बनेगा, इस बात को लेकर झगड़ा है कि पहले आप अपने को टिकट दे रहा हो।
पार्टी के अंदर के लोग बताते हैं कि भाजपा ने एक साल पहले से ही टिकट वितरण के साथ इस बात पर गौर किया था कि क्या किसी को बतौर सीएम आगे लाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक 7 तरह के आंतरिक सर्वे करवाए गए, जिनमें से 3 की रिपोर्ट सीधे अमित शाह के पास भेजी गई। उसके बाद संघ की सूची, संगठन की सूची और जिला अध्यक्षों की लिस्ट मांगी गई, लेकिन ऐसा कोई मंजर नहीं बनकर सामने आया जिसमें ये साफ कहा जा सके कि कोई एक नेता है जिसके लिए पूरे प्रदेश में वोट मिल सकते हैं। इधर टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी पहली सूची के बाद ही आ चुकी थी, जिसके चलते आगे की लिस्टों में देर भी हो रही है। मामले पर राजीव वाजपेयी की राय एकदम बेबाक है।
गुटबाजी जो है ये नासूर रही है अभी तक बीजेपी के लिए, और ये मोदी की लहर जब चली लोकसभा चुनाव में तो उस गुटबाजी से आदमी हटा थोड़ा। दूसरा, अमित शाह की जो संगठनात्मक रचना थी उससे भी गुटबाजी अलग हुई, उन्होंने एकदम नई लीडरशिप खड़ी की। अब ऐसा नहीं है कि वो लीडरशिप ऐसी खड़ी हो गई होगी चीफ मिनिस्टर, मतलब यहाँ कोई ऐसा फेस नहीं है उनके पास कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में हो जाए, प्रोजेक्ट करे, तो दिक्कत है।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी में इस बात को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि कुछ क्षेत्रीय नेता और सीएम के दावेदारों के समर्थक कहीं खेल न बिगाड़ने में लग जाएं। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
बीती 8 जनवरी को वैशाली के राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में एक छात्रा की संदेहास्पद हालात में मौत हुई थी। उसके बाद से ही महिला और छात्र संगठनों का विरोध लगातार जारी है। पटना की सड़कों पर एक बड़ा मार्च निकला, जिसमें बच्ची को जल्द न्याय की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। पटना से सीटू तिवारी।
वैशाली के अम्बेडकर हॉस्टल में बच्ची की मौत के बाद लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। गुरुवार को पटना की सड़कों पर ये नारे गूंजते रहे। महिला संगठन एप्वा, छात्र संगठन आइस और इंकलाबी नौजवान सभा ने इस हत्या के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के पहलू पर पुलिसिया जांच हो, मृतक की मां का बयान 164 के तहत दर्ज कराया जाए, छात्रा के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा, SC/ST छात्रावासों में छात्रों को भयमुक्त माहौल के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए। मार्च का नेतृत्व कर रही एप्वा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा,
और ये सिर्फ हाजीपुर अम्बेडकर विद्यालय की स्थिति नहीं है, पूरे बिहार में जो कस्तूरबा विद्यालय है, जो छात्रावास है लड़कियों के, जहां लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है वहीं के अधिकारियों के जरिए इसकी पूरी जांच की जाए, ये हम मांग कर रहे हैं।
बता दें, वैशाली के दलित छात्रावास में एक बच्ची बीती 8 जनवरी को मृत मिली थी। बच्ची के परिवार का कहना है कि सामूहिक बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या हुई। वहीं वैशाली पुलिस प्रशासन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की बात सामने नहीं आई है। इस मार्च में पीड़ित छात्रा की मां भी शामिल थी। बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन पर लगातार मामला उठा लेने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही वो पुलिसिया जांच से संतुष्ट नहीं है।
10 बजे 11 बजे रात में 12 बजे लेके उस घरे को चेक ले लिया जाइए, कहिए ला ना हम ना हो तो कुछ तोरा ई चेक ले ला भजा लिया रुपया वाला है लड़ता तू कथी से लड़बा संकरी सर हमरा पैसा ना चाहिए हमरा इंसान।
इस मार्च में जहां बड़ी तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने शिरकत की, वहीं छोटी बच्चियों ने भी मृत बच्ची के न्याय के लिए आवाज उठाई। पटना के कारगिल चौक से निकले इस मार्च में राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की एक पूर्ववर्ती छात्रा भी शामिल थी। बीबीसी से बातचीत में उसने कहा कि 2009 में भी इस स्कूल में छेड़खानी का मामला सामने आया था, लेकिन उसे दबा दिया गया। वो बताती हैं,
जी हम पहले पढ़कर निकले हुए 10th पास किए हुए, समझ गए, वहाँ पे घटनाएं 2009 में भी हुआ था, लेकिन सर लोग वहाँ पे दबा दिए थे कि ऐसा कोई ऐसा बात नहीं होगा। उसने दबाने के बाद भी फिर ऐसा घटना घट गया है।
उधर जमीनी हालात की बात करें तो घटना के बाद से ही स्कूल हॉस्टल में रहने वाली 345 छात्राएं हॉस्टल छोड़कर चली गई थी। बीबीसी ने स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई बच्ची हॉस्टल नहीं लौटी है।
वो बच्ची नहीं गई है, खाली मतलब गार्ड रहते हैं वहाँ पर है। रोज मतलब जांच वाले जाते हैं, कभी वो जांच वाले होता है।
21 जनवरी को बिहार में नशे के खिलाफ मानव श्रृंखला बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का एक आधार महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बनाया था। ऐसे में स्कूल के अंदर किसी बच्ची के खिलाफ हुई हिंसा पर सरकार चुप क्यों है? अपनी मार्केटिंग में व्यस्त सरकार इस बच्ची की मौत की अनसुलझी गुत्थी सुलझाने पर कब ध्यान देगी? सीटू तिवारी, बीबीसी पटना।
और अब आपके पत्र।
आपकी राय आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा वंदना का, और आज मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
जी राजेश जी, बहुत सारी चिट्ठियां हैं, पोस्ट कार्ड हैं और ईमेल हैं
जी,
और ज्यादातर जो चिट्ठियां हैं वो हैं जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, रिसेप्शन में साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है, बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं लगातार, आपने भी देखा होगा दिन भर में भी
जी।
तो मैं कुछ उनमें से चुनिंदा ही जाहिर पढ़ पाएंगे, तो मैं उनमें से पहला लेती हूँ। ये पोस्ट कार्ड है नसीम अंसारी साहब का। ये बोल रहे हैं कि पहले तो 8:30 वाला जो रात के कार्यक्रम की बात करें वो सुन लिया करते थे, लेकिन अब तो 7:30 वाला ही सुनना पड़ता है और वो भी आसानी से सुनाई नहीं देता और बहुत परेशानी हो रही है इनको। तो जाहिर है इसी तरह की परेशानी जो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, ये हैं महावीर स्वामी, डेरा की ढाणी, ग्राम चूड़ला, सीकर राजस्थान से ये लिखते
हैं। यानी कि बिहार में भी समस्या है। बक्सर से पहली चिट्ठी आपने पढ़ी, दूसरी राजस्थान
जी,
से।
ये बोल रहे हैं कि मैं तो नियमित श्रोता हूँ लेकिन आजकल प्रसारण की गुणवत्ता बिल्कुल खराब है, ना तो नमस्कार भारत और ना ही दिन भर स्पष्ट सुनाई देता है, और मेरे पास सुनने का साधन सिर्फ और सिर्फ रेडियो ही है, और कृपया इसका कोई समाधान करें।
इसका समाधान करने के प्रयास लगातार हो रहे हैं और ये एक तकनीकी समस्या है जिससे हम अवगत हैं, हमें मालूम है कि ये दिक्कत है, और हम अपने सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें इस समस्या के लिए हमें अफसोस है, हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं
जी। इसी सिलसिले में एक ईमेल भी आया है जो जंग बहादुर सिंह, हमारे बहुत ही पुराने सुनने वाले हैं,
गोल पहाड़ी से
जी। ये बोल रहे हैं कि कई कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं कि जब शुरू में तो 5 मिनट सुनाई ही नहीं पड़ता, ये 18 तारीख की बात कर रहे हैं, फिर 25 मीटर पर थोड़ा बहुत सिग्नल मिलना शुरू भी हुआ लेकिन इतना अस्पष्ट था कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसमें दोबारा हमारी गुजारिश है कि जो भी लोगों को ये दिक्कत आ रही है वो हमें ज़रूर लिखें और भेजें कि कहाँ रहते हैं और कौन सा प्रसारण है उनको सुनने में दिक्कत हो रही है, चाहे ईमेल करें या फिर चिट्ठी लिखें।
ज़रूर, हम जानना चाहते हैं कि ये समस्या कहाँ कहाँ है, कितनी बड़ी है, ताकि हम उसका जल्द से जल्द हल निकाल सकें
जी। और अगला जो ईमेल है वो है एहसान असगर का, मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना महाराष्ट्र से लिखते हैं।
ये भी पुराने श्रोता हैं
जी, बिल्कुल। इन्होंने कार्यक्रम में जो एक प्रस्तुति थी, एक मनोवैज्ञानिक जो आई थी अनुजा कपूर
जी,
वो जो रेडियो पहले फेसबुक लाइव भी था और उसका रेडियो कार्यक्रम पर भी प्रसारण हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत ही अलर्ट करने वाली थी
जी।
और उस समय इन्होंने कहा कि जब कार्यक्रम चल रहा था तो मेरी 5 और 4 वर्ष की दोनों बेटियां मेरे साथ थीं और दिव्या जी ने हमारे मन में जो सवाल उठ रहे थे उनका उत्तर एकदम एक तरह से अनुजा जी से जान लिया।
जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ही यही था अनुजा जी को अपने दफ्तर में बुलाने का और इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करने का, ताकि हम लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें, लोगों को ये बता सकें कि इस तरह के जो खतरे हैं हमारे रोज़ के जीवन में हमारे बच्चों और बच्चियों के प्रति, उससे कैसे हम निपट सकते हैं।
मोहम्मद नदीम साहब है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से और बोल रहे हैं कि जब 10 साल के थे तब से ही कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब 17 साल के हमारे युवा श्रोता।
क्या बात है, स्वागत है आपका और सुनते रहें, और आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तभी आपने हमें ईमेल लिखा है, और हमें पत्र लिखें, ईमेल लिखें और हमसे जुड़े रहें। हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर कि इतने कम उम्र के और नौजवान हमें सुनते हैं, अच्छा लगा।
बिल्कुल, और इन्होंने खास तौर पे कहा है कि विवेचना जो बयां करने का अंदाज है रेहान साहब का और आदेश गुप्त की आवाज जो खेल समाचार देते हैं वो इन्हें विशेष तौर पर काफी पसंद है।
आपकी प्रशंसा हम पहुंचा देंगे इन लोगों तक जिनकी आपने तारीफ की, और अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। चलते चलते मैं आपको पता बता दूं, अगर आप डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो
hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और हम यहाँ आपको बता दें कि अगर आपको BBC हिंदी के कार्यक्रम रेडियो पर साफ सुनाई नहीं दे रहे हैं तो हमें लिख भेजिए कि आप कहाँ रहते हैं और कौन से प्रसारण सुनने में आपको परेशानी होती है। हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल पर आप हमें लिख सकते हैं hindi.letters@bbc.co.uk। अपनी चिट्ठी के ऊपर रेडियो प्रसारण लिखना न भूलें। और अब खेल समाचारों के लिए राखी शर्मा स्टूडियो में है। राखी, भारत इंग्लैंड वन डे क्या हाल है ताज़ा?
कटक में ये मैच चल रहा है बाराबती स्टेडियम में, जहां फिलहाल भारत की स्थिति मजबूत नज़र आ रही है। भारतीय टीम ने जो 382 रनों का लक्ष्य दिया है इंग्लैंड को, उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम के 4 विकेट गिर चुके हैं और 183 रन उन्होंने बना लिए हैं। 29 ओवर का खेल हो चुका है। फिलहाल क्रीज पर इयन मॉर्गन मौजूद हैं 15 रन बनाकर और जोस बटलर खेल रहे हैं 7 रन बनाकर। इंग्लैंड के जो 4 विकेट गिरे उनमें एलेक्स हेल्स, जो रूट, जेसन रॉय और बेन स्टोक्स रहे अपना विकेट गंवाने वाले। हेल्स को 14 रन पर जसप्रीत बुमराह, रूट को 54 और स्टोक्स को 1 रन के निजी स्कोर पर आर अश्विन और जेसन को 82 रन पर रविंद्र जडेजा ने आउट किया। इससे पहले भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 381 रन बनाए। हालांकि भारत की शुरुआत थोड़ी खराब रही, उसके 3 विकेट महज 25 रन पर गिर गए, लेकिन इसके बाद 4th विकेट के लिए युवराज सिंह और पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के बीच 256 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। युवराज सिंह ने 6 साल बाद वनडे में कोई शतक लगाया। उनकी 150 रन की पारी उनका वनडे में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी रहा। अपनी पारी में युवराज ने 21 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं धोनी ने 134 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के जमाए। युवराज के आउट होने के बाद केदार जाधव ने तेजी से रन बनाते हुए 10 गेंदों पर 22 रन जोड़े। हार्दिक पांड्या 19 और रविंद्र जडेजा 16 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के लिए वोक्स ने 4 और प्लंकेट ने 2 विकेट लिए। और वहीं एक खबर टेनिस से भी है। अनुभवी भारतीय खिलाड़ी लियांडर पेस और मेंस डबल्स के उनके जोड़ीदार ब्राजील के आंद्रेसा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पहले दौर से ही हार कर बाहर हो गए हैं। पेस और साकी जोड़ी को फिलीपींस के ट्रीट ह्यूए और बुल्गेरिया के मैक्स मिर्नी की जोड़ी ने सीधे सेटों में 6-4, 6-7, 4-6 से मात देकर बाहर कर दिया। और मिक्स डबल्स में फिलहाल उनकी चुनौती बाकी है, मार्टिना हिंगिस के साथ वो उतरेंगे।
शुक्रिया राखी शर्मा आपका। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर होने वाले जल्लीकट्टू खेल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। मध्य इटली के अबरुज्जो इलाके में एक माउंटेन रिसोर्ट की हिमस्खलन की चपेट में आने के कारण कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान की मीडिया का कहना है कि तेहरान में एक बहुमंजिली इमारत के गिरने से कई दमकल कर्मचारियों की मौत की आशंका है। इस इमारत में आग लगने के बाद दमकल कर्मचारी उसे बुझाने में लगे थे, इसी दौरान यह इमारत गिर गई। अफ्रीकी देश गाम्बिया के निर्वाचित राष्ट्रपति अडामा बैरो का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया निखिल। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को तमाम सहयोगियों के साथ दें अनुमति। स्टूडियो संभाला था तिलक भाटिया ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत के साथ, लेकिन bbchindi.com 24 घंटे सातों दिन आपके साथ है।